नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने सहित 3 विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा फिर शुरू। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया भारत की नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान। श्री हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री हरिवंश के पूर्व अनुभवों ने सदन की कार्यवाही को और अधिक प्रभावशाली बनाया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत किया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन का आग्रह किया। और महिला क्रिकेट में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज डर्बन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तीनों विधेयकों पर आज मतदान होना है। चर्चा में भाग लेते हुए डीएम के सांसद के कणिमोजी ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र ने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को कल रात अधिसूचित कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, ऐसे में इसकी क्या आवश्यकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि देश महिला आरक्षण के पक्ष में लगभग राजनीतिक सहमति की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि महिला आरक्षण का क्रियान्वयन संसद के विस्तार 2011 की जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। श्री थरूर ने परिसीमन विधेयक को राजनीतिक सत्ता में एक बड़ा बदलाव बताया और किसी भी निर्णय से पहले व्यापक चर्चा की मांग की।
सीमांकन से जुड़े मुद्दों पर सभी हितधारकों, सभी राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और ना ही इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लागू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
YSRCP सांसद PV मिथुन रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण के समर्थक रही है। उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया विपक्ष को कुचलने का उपकरण नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया होनी चाहिए। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ये विधेयक देश की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए है।
50% महिलाओं को आरक्षण देना दीवाजी का कदम नहीं हो सकता है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज 2026 है, 3 साल के बाद उसकी पूरी तैयारी करके और पूरे सोच समझकर यह बात कही गई है।
तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान संसद के विशेष सत्र पर सवाल उठाते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। TDP सांसद लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने विधेयकों के समर्थन में कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने कल ही लोकसभा में राज्यों के लिए 50% सीटों की वृद्धि पर स्पष्टीकरण दे दिया है। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बालिकाओं की शिक्षा पर काम करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कई स्कूल क्यों बंद हैं। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने मांग की कि महिला आरक्षण को परिसीमन के बिना संसद की वर्तमान क्षमता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का ये ऐतिहासिक अवसर है। चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का समर्थन करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश की लाखों महिलाओं की निगाहें संसद, उसके इरादों और उसके फैसलों पर टिकी हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधिसूचना अमल में नहीं लाए गए पुराने कानूनों को लागू करने के लिए जारी की गई है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये जारी प्रक्रिया का हिस्सा है।
एक प्रोसेस है, कानून तो हम लोग अमेंडमेंट के लिए अभी ला रहे हैं, पुराने कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो कमेंसमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकला है, प्रोसेस है, प्रोसेस को कोई विषय ना बनाए।
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने महिला आरक्षण विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये विपक्ष के लिए अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री शर्मा ने सत्ता में रहते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए पर्याप्त कदम न उठाने पर कांग्रेस की आलोचना की।
ये ऐतिहासिक क्षण है जब कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास दोनों के पास एक अवसर है अपनी पिछली गलतियों को ठीक करने का। 27 सालों से जो उन्होंने एक अन्याय किया था महिलाओं के आधी आबादी के साथ में कि उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया था पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, अब वो देने का अवसर है तो उनके पास सुनहरा अवसर है कि अपनी पिछली भूलों का वो प्रायश्चित कर सके।
छत्तीसगढ़ में भाजपा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने महिला आरक्षण विधेयक को बेहद गर्व का क्षण बताया। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय झा ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से प्रतीक्षित कदम बताया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री झा ने कहा कि महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने का यह कदम काफी विलंब के बाद आया है और इसे सर्वसम्मति से समर्थन मिलना चाहिए।
स्वागत योग्य कदम है महिला आरक्षण जो आया है 1/3, और मुझे लगता है कि बहुत ऑलरेडी लेट हो गया। मैं बिहार से आता हूं और बिहार में 50% से ज्यादा महिलाएं पंचायत में जीत के आती है। 2025 का चुनाव हुआ ना बिहार का भी, 10% ज्यादा महिलाएं वोट की है, आप समझ सकते हैं उनका रुझान कितना बड़ा है।
106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम कल से लागू हो गया है। 2023 में संसद ने इस अधिनियम को पारित किया था जो संघीय ढांचे के सभी स्तरों पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये महत्वपूर्ण कानून लोकसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा सहित सभी राज्य विधानसभाओं में सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए बारी बारी से आरक्षित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति एक सशक्त भारत की पहचान है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए नारी की शक्ति और योगदान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की माताएं, बहनें और पुत्रियां आज अपने अटूट संकल्प, समर्पण और सेवा भावना से हर क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ा रही हैं। बिहार के पटना में नारी शक्ति वंदन विषय पर आधारित नारी शक्ति विकसित भारत दौड़ का आज आयोजन किया गया। ये दौड़ युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा माई भारत के सहयोग से आयोजित की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्री हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। वे निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। राज्यसभा के उपसभापति का पद श्री हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद रिक्त हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए इस पद के लिए श्री हरिवंश को मनोनीत किया। उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा कि मतभेद और स्वस्थ बहस लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संसदीय कामकाज में व्यवधान का कोई स्थान नहीं है। तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर श्री हरिवंश ने कहा कि संविधान संसदीय नियमों और परंपराओं के दायरे में रहते हुए वे सदन की गरिमा बनाए रखने और सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने का हर संभव प्रयास करेंगे।
आप सभी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है अपने से एक सदस्य के लिए आभार व्यक्त करने का। कई लोगों ने जो भावना प्रधान चीजें कही उनके प्रति उसी भावना उसी सम्मान के साथ मैं अपना आदर व्यक्त करता हूं। आपके सहयोग का योग पात्र मैं सिद्ध हो सकूं जीवन में, यही प्रयास रहा है, आगे भी रहेगा।
श्री हरिवंश ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे उन पर दिखाए गए विश्वास और समर्थन के लिए अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका व्यापक विधायी और राजनीतिक अनुभव सीखने और प्रेरणा का स्रोत है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री हरिवंश को बधाई देते हुए कहा कि उनका वर्षों का अनुभव आज सदन के लिए पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उपसभापति के रूप में उनका नया कार्यकाल भी उसी भावना और समर्पण के साथ जारी रहेगा।
हमने सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को और अधिक प्रभावी होते हुए भी देखा है और मैं कह सकता हूँ कि केवल सदन की कार्यवाही का संचालन ही नहीं, वे अपने जीवन के जो भूतकाल के अनुभव है उसको भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को समृद्ध करने में उपयोग लाते हैं।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी श्री हरिवंश को बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उपसभापति विपक्ष के हितों का ध्यान रखेंगे और सदन में उन्हें पर्याप्त समय आवंटित करेंगे।
इस प्रतिष्ठित पद पर आपके चुनाव ने एक और मिसाल कायम की है। आप इस पद को ग्रहण करने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये पहला प्रेसिडेंट है और पहला एक काम आपको मिला है। इससे ये साबित होता है कि आप इस पद के लायक हैं।
राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि हरिवंश नारायण सिंह का एक बार फिर निर्विरोध उपसभापति चुना जाना संतोष का विषय है।
एक उपसभापति ही नहीं बल्कि एक वेरी एक्सपीरियंस पर्सनालिटी एज उपसभापति हमारे यहाँ फिर से आपके रूप में आप काम कर रहे हैं। आपको मेरी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से और सभी हाउस के सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के कूच बिहार में चुनावी रैली की। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कथित रूप से बेरोजगारी को मुद्दा बनाने पर सुश्री बनर्जी ने कहा कि भाजपा नागरिकों के कल्याण को लेकर चिंतित नहीं है। उधर भाजपा नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार का अंतिम दिन नजदीक आने पर सभी दल राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचार में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आकाशवाणी अपने श्रोताओं को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी दे रहा है। इस क्रम में आज चर्चा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के लालगुडी विधानसभा क्षेत्र की। लालगुडी जिले का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है जो आध्यात्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है।
लालगुड़ी तिरुचिरापल्ली जिले के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। लालगुड़ी में 2,11,043 मतदाता हैं। ये क्षेत्र पारंपरिक हस्तशिल्प और पीतल के सामान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस बार लालगुड़ी में त्रिकोणीय मुकाबला है। डीएमके के 4 बार के विधायक ए सौंदर पांडियन 5वीं बार चुनाव मैदान में है। उनके मुकाबले में आईजेके की उम्मीदवार डॉक्टर लीमा रोज मार्टिन है जो पहली बार चुनाव लड़ रही है और सामाजिक कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। आईजेके एनडीए का सहयोगी दल है। तीसरे उम्मीदवार ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के पूर्व मंत्री केपी कृष्णन हैं, जो अब तमिलगा वेत्री कड़गम से चुनाव लड़ रहे हैं। लालगुड़ी विधानसभा क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था। इस सीट पर डीएमके 10 बार जबकि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और कांग्रेस 2-2 बार जीत हासिल कर चुकी है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
आकाशवाणी से कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत आज जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक शफी शौक के साथ बातचीत प्रसारित की जाएगी। श्री शौक ने कश्मीरी साहित्य और भाषा संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया है और उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया जाएगा।
मिर्जा गालिब की बेहतरीन गजलों का अंग्रेजी तर्जुमा किया, द बेस्ट ऑफ मिर्जा गालिब्स पर्शियन पोएट्री, तो मेरी किताब छपी, बहुत चली और बहुत पसंद की गई। इसी तरह मैं कभी उर्दू की बेस्ट सूफियाना पोएट्री को कश्मीरी में डाला। इसी तरह ऐसे ही काम करता रहा और अपनी शायरी और अफसाने लिखने के साथ साथ मेरी 106 किताबें छप चुकी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत किया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन का आग्रह किया है। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज डर्बन में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने सहित 3 विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा फिर शुरू। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू। श्री हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।